Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England, stand the statues.
England, London में मशहूर वेस्टमिंस्टर एबे के विशाल वेस्ट डोर के ऊपर 20वीं शताब्दी में 10 ईसाई शहीदों की मूर्तियां हैं. इनमें डायट्रिक बोनहेफर 1906 में जन्मे एक विद्वान जर्मन धर्मशास्त्री की मूर्ति भी शामिल है. बोनहेफर नाजी तानाशाही और यहूदियों और अन्य पर इसके व्यवहार का स्पष्टवादी आलोचक बन गया था. उसके सक्रिय विरोध के कारण उसके कारावास में डाल दिया गया था और उसे अंततः नजरबंद शिविर में फांसी दे दी गई. बोनहेफर ने बहुत सी बातें लिखी और उसकी जानी मानी कृतियां वे पत्र हैं जिन्हें सहानुभूति रखने वाले पहरेदारों ने जेल से बाहर पहुंचाने में उसकी मदद की थी. बाद में ये लेटर्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रिजन के रूप में प्रकाशित हुए थे. उन पत्रों में से एक उसने अपनी भतीजी को उसके विवाह से पहले लिखा था, जिसमें ये उत्तम विचार शामिल थे, विवाह एक दूसरे से मात्र प्रेम करने से बहुत अधिक है. अपने प्रेम में आप दोनों संसार में केवल स्वयं को देखते हो, लेकिन विवाह में आप दोनों पीढ़ियों की जंजीर के बीच एक कड़ी हो जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लाता है और ले जाता है और अपने राज्य में वापस शामिल कर लेता है. अपने प्रेम में आप केवल अपने सुखद संसार को देखते हैं, लेकिन विवाह में आपको संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी के लिए एक नियुक्ति दी जाती है. आपका प्रेम आपकी निजी संपत्ति है. विवाह निजी होने से कुछ अधिक है. यह एक प्रतिष्ठा है और एक पद है. यह बिल्कुल एक मुकुट के समान है और केवल शासन करने की इच्छा मात्र नहीं है, यह एक राजा को दर्शाता है. ऐसा ही विवाह है और ये केवल एक दूसरे के लिए प्रेम मात्र नहीं है जो आप दोनों को परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि से एक साथ जोड़े रखता है. प्रेम आप करते हैं, लेकिन विवाह स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से होता है. किस तरह से एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी की नियुक्ति से श्रेष्ठ है और किस प्रकार ये स्वर्ग से परमेश्वर की ओर आता है, इसे समझने के लिए हमें आरंभ में जाना होगा. भविष्यवक्ता ने बताया है कि पहले आत्माओं के रूप में हमारा अस्तित्व था और हमें परमेश्वर द्वारा आकार दिया गया, यानी आत्मिक शरीर. इस प्रकार हम उसकी आत्मिक संतान स्वर्गीय माता पिता के बेटे और बेटियां बन गए. इस पृथ्वी पर पूर्वात्मिक अस्तित्व में एक समय आया जब विकास करने की उसकी इच्छा कि हमें उसके समान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके. हमारे स्वर्गीय पिता ने एक योग्य बनाने वाली योजना तैयार की. धर्म शास्त्रों में इसे कई नाम दिए गए, उद्धार की योजना, सुख की महान योजना और मुक्ति की योजना. इस योजना के सैद्धांतिक उद्देश्यों को इब्राहिम को इन वचनों में समझाया गया था, और उनके बीच ये खड़ा हुआ जो परमेश्वर के समान था और उनसे कहा जो उसके साथ थे, हम नीचे जाएंगे क्योंकि वहां पर स्थान है और हम उन वस्तुओं को ले जाएंगे और हम पृथ्वी की रचना करेंगे जहां ये आत्माएं निवास कर सकें, और यहां हम उन्हें साबित करने का मौका देंगे कि क्या वे उन सब कामों को करेंगे जो प्रभु उनका परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है. और वे जो अपनी पहली अवस्था को कायम रखते हैं उन्हें और दिया जाएगा, और वे जो अपनी दूसरी अवस्था को कायम रखते हैं उनके सिरों पर महिमा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी. हमारे स्वर्गीय पिता को धन्यवाद, हम पहले ही आत्मिक अवस्था में आ चुके थे. अब वह हमें परिपूर्ण या संपूर्ण होने के मार्ग पर अवसर दे रहा था. भौतिक अवस्था का जोड़ा जाना परमेश्वर के समान परिपूर्ण या महिमापूर्ण बनने के लिए जरूरी है. यानी जब परमेश्वर के साथ पृथ्वी पूर्व आत्मिक जीवन में थे, हमने उसकी योजना में भाग लेने के लिए सहमति दी थी, या अन्य शब्दों में हमने अपनी पहली अवस्था को कायम रखा. हमें और दिया गया जब हम भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर निवास करने आए थे जिसे उसने हमारे लिए बनाया था. यदि तब अपने नश्वर अनुभव के मार्ग में हम उन सब कामों को करने का चुनाव करते हैं जो प्रभु हमारा परमेश्वर हमें आज्ञा देगा, हम अपनी पूरी अवस्था को कायम रखते हैं. इसका अर्थ है कि हम अपने चुनावों द्वारा परमेश्वर और स्वयं को प्रदर्शित करेंगे कि हम उसकी उपस्थिति से दूर और भौतिक शरीर में इसकी सारी शक्तियों, इच्छाओं और लालसाओं के होते हुए अपनी निष्ठा और क्षमता से उसके स्वर्गीय नियमों का पालन करेंगे. क्या हम अपने भौतिक शरीरों पर लगाम लगा सकते थे ताकि ये आत्मा का मालिक बनने के स्थान पर इसके अधीन हो जाएं। क्या समय और अनंतता में हमें जीवन की रचना करने की शक्ति सहित ईश्वरीय शक्तियां सौंपी जा सकती हैं? क्या हम व्यक्तिगत रूप से बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो ऐसा कर सकेंगे उनके सिरों पर महिमा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। उस महिमा का अति महत्वपूर्ण पहलू है अमर और महिमापूर्ण शरीर में पुनः जीवित होना। कोई आश्चर्य नहीं इस शानदार संभावना और प्रतिज्ञाओं पर हम खुशी से चिल्लाए थे। इस दिव्य योजना में सफल होने के लिए चार बातें आवश्यक रूप से बताई गई। पहली थी हमारे निवास स्थान के लिए पृथ्वी की रचना। सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन कुछ भी हो, हम जानते हैं कि ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुआ था, लेकिन इसे पिता परमेश्वर के निर्देश पर यीशु मसीह द्वारा पूरा किया गया था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। दूसरी है नश्वरता की अवस्था। आदम और हव्वा ने उन सब की ओर से कार्य किया था जिन्होंने पिता के सुख की महान योजना में भाग लेना चुना था। उनके पतन का कारण हमारे शारीरिक जन्म और परमेश्वर की निकटता के बाहर नश्वर अनुभव करने और समझने के लिए आवश्यक परिस्थितियां रची गईं। पतन के साथ अच्छे और बुरे और परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति को चुनने की जागरूकता आई। अंततः पतन से शारीरिक मृत्यु मिली जो नश्वरता में हमारे समय को अस्थायी करने के लिए जरूरी थी ताकि हम अपने पापों में हमेशा जीवित न रह सके। तीसरी है पतन से मुक्ति। हमारे पिता की योजना हमें मृत्यु की भूमिका देखते हैं, लेकिन अंत में शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की मृत्यु पर किसी तरह से विजय प्राप्त किए बिना यह योजना सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार एक मुक्तिदाता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने आदम और हव्वा के उल्लंघनों का प्रायश्चित करने के लिए दुख सहा और मारा गया ताकि सभी को पुनरुत्थान और अमृत मिले। और क्योंकि हम में से कोई भी पूर्ण और निरंतर सुसमाचार की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी नहीं रह पाएगा, उसका प्रायश्चित हमें अपने पापों से मुक्ति भी दिला सकता है यदि हम पश्चाताप करेंगे। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित अनुग्रह के कारण पापों की क्षमा और आत्मा की पवित्रता उपलब्ध होती है। हम आत्मिक रूप से पुनः जन्म ले सकते हैं और परमेश्वर में जा सकते हैं। हमारी आत्मिक मृत्यु परमेश्वर के अलगाव और दूर हो जाएगा। चौथा है और अंतिम है हमारा शारीरिक जन्म और उसके पश्चात परमेश्वर के राज्य में आत्मिक पुनः जन्म, क्योंकि उसके कार्य की सफलता हेतु हमें उसके समान बनाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया कि पुरुष और स्त्री विवाह करें और जन्मों को बच्चों को जन्म दें और इस प्रकार परमेश्वर के साथ भागीदार बन जाएं। भौतिक शरीर नश्वरता की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उसके साथ अनंत महिमा के लिए जरूरी है। उसने ये भी नियुक्त किया कि माता पिता परिवारों की स्थापित करें और प्रकाश और सच्चाई में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए मसीह की आज्ञा रखने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। पिता ने हमें आज्ञा दी है अपने बच्चों को स्वतंत्रता से इन बात को सिखाओ कि जिस प्रकार हमने जल और लहू की आत्मा द्वारा संसार में जन्म लिया, हम फिर से स्वर्ग के राज्य में भी जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेंगे और यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध होंगे ताकि सभी पाप से शुद्ध किए जाएं और इस प्रकार संसार में और आने वाले संसार में अमृत की महिमा सहित अनंत जीवन में शब्दों का आनंद लें। ये जानकर कि हमने क्यों हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति को छोड़ा और उसके पास वापस जाने और उसके समान बनने के लिए क्या करना है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर हमारे समय के संबंध में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शारीरिक जन्म और आत्मिक पुनः जन्म, दोनों अनंत जीवन के लिए जरूरी हैं। ये डायट्रिक बोनेफर के शब्दों विवाह का पद संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी की नियुक्ति कि यहाँ दिव्य संस्था विवाह स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से होता है के उपयोग को पूरा करता है। ये दोनों पीढ़ियों के बीच में जंजीर की एक कड़ी है यहाँ और इसके बाद स्वर्ग के संगठन में। एक परिवार जिसका निर्माण पुरुष और स्त्री के विवाह पर होता है परमेश्वर की योजना को सफल होने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ऐसा स्थान जहाँ बच्चे शुद्धता और निष्कपटता से परमेश्वर की ओर से जन्म लेते हैं और ऐसा वातावरण जहाँ उन्हें सफल नश्वर जीवन और आने वाले संसार में अनंत जीवन के लिए सिखाया और तैयार किया जाता है। इस प्रकार के विवाहों पर निर्मित परिवार समाज के फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए समाज और राष्ट्र सामान्य रूप से विवाह और परिवार की विशेष रूप से प्रोत्साहन और सुरक्षा देते हैं। समाज शास्त्र द्वारा विवाहित पुरुष और स्त्री द्वारा नेतृत्व विवाह और परिवारों का पक्ष लेना उत्साहवर्धक हो सकता है। और इस प्रकार हम चेतावनी देते हैं कि परिवार से अलगाव व्यक्तियों, समुदाय और राष्ट्रों पर संकट लाएगा, जैसा प्राचीन और आधुनिक भविष्य वक्ताओं द्वारा बताया गया है। लेकिन विवाह और परिवार की भूमिका का हमारा दावा समाज शास्त्र पर नहीं, बल्कि इस सच्चाई पर आधारित है कि ये परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उसने ही आरंभ में आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में रचा था, एक नर और एक नारी, और उन्हें एक शरीर बनने और वृद्धि करने और पृथ्वी को भरने के लिए पति और पत्नी के रूप में जोड़ा था। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिव्य स्वरूप है, लेकिन वैवाहिक बंधन में पुरुष और स्त्री के संबंध में ही हम शायद परमेश्वर के स्वरूप में संपूर्ण रूप से नर और नारी के रूप में बनाए जाते हैं। न हम न ही कोई अन्य नश्वर व्यक्ति विवाह की इस दिव्य विधि को बदल सकता है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। इस प्रकार का विवाह वास्तव में स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से होता है और सुख की योजना का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना पतन और प्रायश्चित है। नश्वरता पूर्व संसार में शैतान ने परमेश्वर और उसकी योजना का विरोध किया था, और उसका विरोध तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। ये विवाह को रोकने और परिवारों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है, और जहाँ विवाह और परिवारों का निर्माण हो जाता है, वो इन्हें कष्ट करने का भरपूर प्रयास करता है। वो कई प्रकार के अनैतिक विचारों और कार्यों द्वारा विवाह के प्रसंग में हिंसक रूप से अलगाव पैदा कर मानव की प्रजनन शक्ति की पवित्रता पर आक्रमण करता है। पुरुषों और स्त्रियों को ये मानने के लिए मजबूर करता है कि विवाह और परिवार की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज या इनका त्याग किया जा सकता है, या करियर, अन्य सफलताओं और आत्म संतुष्टि की चाहत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समक्ष इनका महत्व कम है। निश्चित रूप से शैतान खुश होता है जब माता पिता अपने बच्चों को मसीह में विश्वास करने की शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परिवर्तन प्राप्त करने और आत्मिक रूप से फिर जन्म लेने में लापरवाह रहते हैं। भाई और बहनों, बहुत सी बातें अच्छी हैं, बहुत सी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जरूरी भी हैं। विवाह और परिवार के संबंध में मूलभूत सच्चाइयों की घोषणा करना उनके बलिदानों और सफलताओं को अनदेखा या कम आंकना नहीं है जिनकी आदर्श परिस्थितियां वर्तमान में नहीं हैं। आप में से कुछ को विवाह की आशीष नहीं दी गई है, जिनमें योग्य साथी का न मिलना, समलैंगिक आकर्षण, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या मात्र असफल होने का भय कम से कुछ क्षण के लिए विश्वास को धूमिल कर देता है, या आपका विवाह होता है लेकिन ये विवाह टूट जाता है और आपको वो सब अकेले करना पड़ता है जिसे दो जनों को मिलकर करना भी कठिन लगता है। आप में से कुछ जिनका विवाह हुआ है लेकिन अत्यधिक चाहत और प्रार्थनाओं के बावजूद बच्चे नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक के पास उपहार है, प्रत्येक के पास हुनर है, प्रत्येक दिव्य योजना के विकास में हर पीढ़ी में योगदान दे सकती है। बहुत जो अच्छा है, बहुत जो जरूरी है, कभी कभी जो अभी के लिए आवश्यक है, ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है जो आदर्श नहीं है। आप में से बहुत से अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं, और आप जो कि नश्वरता में कठोरतम कष्ट उठाते हुए उसके बच्चों के उत्कर्ष के लिए परमेश्वर की योजना में बचाव में सामने आते हैं, हम सब आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास के साथ हम प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित, पूर्वानुमानित और अंत में उन सभी की हानि और नुकसान की भरपाई करके जो उसकी ओर मुड़ते हैं, जो पिता के पास है वो सब उसके बच्चों का है, और उसमें से कम प्राप्त करने के लिए किसी को भी पूर्व निर्धारित नहीं किया गया है। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे अति महत्वपूर्ण नियुक्ति में अयोग्य होने के विषय में उसकी चिंता को गुप्त रूप से बताया था। मैंने महसूस किया कि जिन बातों को लेकर वो चिंतित थी मामूली थे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत अच्छे अपने कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न और उसके भरोसे का आदर करना चाहती थी। मैंने आश्वासन के वचन कहे और अपने हृदय में मैंने याचना की कि परमेश्वर उसका स्वर्गीय पिता उसे उसके प्रेम के साथ शक्ति और उसकी सहमति की गवाही दे जब वो उसका कार्य करती है। आप सब के लिए मेरी यही प्रार्थना, मैं आशा करता हूँ आप सब उसके दृश्य में सहमति पाए। मैं आशा करता हूँ विवाह फले फूले और परिवार तरक्की करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।